नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत ने चीन से आयातित स्टील पर अगले 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का फैसला किया। भारत ने चीन से आयातित फ्लैट बेस स्टील व्हील पर $613 प्रति टन का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। हालांकि ये शुल्क नया नहीं है, भारत साल 2018 से ही स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता आ रहा है। बस सरकार ने इसे अगले 5 सालों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया, यानी अगले 5 साल तक भी स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहेगी। भारत सरकार के इस्पात सचिव नागेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार लगातार चीन से स्टील आयात पर नजर बनाए हुए है। वहीं एंटी डंपिंग पर चीनी विक्रेताओं की तरफ से चिंता जताई गई। वहीं इससे पहले जुलाई में व्यापार अधिकारियों की सिफारिश थी कि चीन से आयातित चुनिंदा स्टील उत्पादों पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन भारत ने ये कदम नहीं उठाया था। भारत सरकार का उद्देश्य है कि स्टील का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को ऊंची कीमतों से बचाना है। बम्बई उच्च न्यायालय ने साल 2016 में नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के कथित रूप से गलत कार्यों में शामिल होने के आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ उच्च न्यायालय ने कहा कि आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अदालतों को मौद्रिक नियामक ढांचे में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। न्यायाधीश A.S. गडकरी और न्यायाधीश शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने 8 सितंबर को मनोरंजन रॉय की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से हटाने के दौरान आरबीआई के कुछ अधिकारियों के कथित रूप से गलत गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया गया था। सफर से संबंधित ऑनलाइन बुकिंग सुविधाएं देने वाली कंपनी यात्रा ऑनलाइन ने अपने आईपीओ के लिए 135 से 142 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी ने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि 15 सितंबर को खुलने वाला उसका निर्गम 20 सितंबर को बंद होगा। निवेशक न्यूनतम 105 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ में 602 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 1,21,83,099 शेयरों की बिक्री पेशकश भी की जाएगी। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर आईपीओ से कंपनी को 775 करोड़ रुपए तक जुटाने की उम्मीद है। निर्गम लाने के पहले कंपनी ने राइट्स इश्यू जारी कर 62.01 करोड़ रुपए जुटाए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को उत्सर्जन में कटौती में मदद के लिए डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 63वें वार्षिक सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण स्तर स्वास्थ्य के लिए चिंता का एक गंभीर विषय बन गया है और डीजल वाहनों की बिक्री को कम करने के लिए करों में बढ़ोतरी का मामला बनता है। गडकरी ने संकेत दिया था कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है जिसे वित्त मंत्री के साथ बैठक में उन्हें सौंपा जाएगा। गडकरी ने कहा, मैं वित्त मंत्री से डीजल इंजन वाहनों पर 10% अतिरिक्त GST लगाने का अनुरोध करूंगा। केवल इसी तरह डीजल वाहनों को धीरे धीरे हटाया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन एहतियात एयरवेज ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले कैटरीना ने साल 2010 में एहतियात के साथ काम किया था। एयरलाइन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार एहतियात के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कंपनी की प्रचार के लिए बनाई जाने वाली वीडियो में नजर आएंगी। बयान में कहा गया कि एयरलाइन के साथ उनकी साझेदारी भारतीय बाजार में एहतियात को एक मजबूत स्थिति में लाएगी। ये भारत में निरंतर वृद्धि के लिए एयरलाइन की रणनीति के अनुरूप है। एहतियात एयरवेज में ब्रांड विपणन एवं प्रायोजन की उपाध्यक्ष अमीना ताहिर ने कहा, हम अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एहतियात एयरवेज परिवार में कैटरीना कैफ का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर मंगलवार को जोर दिया जो टिकाऊ तथा पर्यावरण के अनुकूल हो। साथ ही उन्होंने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से अमृतकाल के लक्ष्यों को हासिल करने के वास्ते एक मार्ग प्रशस्त करने को भी कहा। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में अपने संदेश में मोदी ने देश की वृद्धि में ऑटो उद्योग की भूमिका को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, आज के भारत में गतिशीलता अपने विभिन्न रूपों में वृद्धि के प्रमुख चालक हैं। जैसे जैसे करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलकर नव मध्यम वर्ग में आते हैं, वहां सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता आती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्यावरण अनुकूल कोयला परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अगले कुछ साल में 61 संपर्क परियोजनाओं पर 24,750 करोड़ रुपए पूंजी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया ने बयान में कहा कि खदानों से निकलने वाले कोयले को नजदीकी परिवहन केंद्र तक पहुँचाने से संबंधित ये परियोजनाएं 3 चरणों में स्थापित की जाएंगी। FMC परियोजनाएं पूरी होने पर इनकी कुल वहन क्षमता 76.35 करोड़ टन की होगी। कोल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोयला परिवहन का पर्यावरण अनुकूल होना जरूरी है ताकि कोयला खदानों के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।